एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
नमस्कार, ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम सीधे चल रहे हैं प्राचीन ग्रीस, लगभग 2500 साल पहले माइलेटिस शहर में।
हाँ, जहाँ से कहते हैं कि पश्चिमी सोच, वेस्टर्न फिलोसफी की कहानी शुरू हुई।
बिल्कुल, और इस कहानी के मतलब पहले पन्ने पर ही नाम आता है माइलेटिस के थेल्स का।
हाँ जी, थेल्स अक्सर उन्हें पहला दार्शनिक कहा जाता है, और ये कोई छोटा तमगा नहीं है।
सही बात है, मतलब उन्होंने सोच की है पूरी नई दिशा ही शुरू कर दी।
बिल्कुल, उनसे पहले दुनिया को समझने के लिए क्या था, देवताओं की कहानियां थी, है ना, जिसे मिथोस कहते हैं। थेल्स ने कहा, नहीं रुको, हम अपने आसपास की दुनिया को देखकर, तर्क लगाकर, मतलब लोगों से भी समझ सकते हैं।
तो आज की हमारी ये जो बातचीत है, इसका मकसद यही है, थेल्स को समझना, उनका जमाना कैसा था, उनके क्या खास विचार थे, और क्यों आज भी इतने सालों बाद भी हम उनकी बात कर रहे हैं।
हाँ, और ये जानना भी दिलचस्प है कि थेल्स ने खुद कुछ लिखा नहीं, या शायद लिखा हो पर वो हम तक पहुंचा नहीं।
अच्छा,
हाँ, हमें उनके बारे में अरस्तु जैसे, मतलब बाद के विचारकों से ही पता चलता है।
तो ये एक अहम बात है, हम थेल्स को सीधे उनकी आवाज में नहीं सुन रहे हैं।
नहीं, दूसरों की नजरों से देख रहे हैं, फिर भी जो तस्वीर उभरती है वो कमाल की है। तो चलिए उनके समय से शुरू करते हैं। थेल्स थे लगभग 624 से 546 ईसा पूर्व।
काफी पुराना समय है।
हाँ, ये ग्रीस का आर्किक काल था, एक ऐसा दौर जब ज्ञान और कला में एक नई जागृति आ रही थी, जिसे कभी कभी ग्रीक चमत्कार भी कह देते हैं।
और उनका शहर माइलेटिस, वो आजकल के तुर्की के तट पर है ना?
जी हाँ, और वो कोई मतलब साधारण जगह नहीं थी, एक बहुत व्यस्त बंदरगाह, व्यापार का बड़ा केंद्र।
तो वहां काफी कुछ चल रहा होगा।
अरे बिल्कुल, सोचिए एक शहर जहां अलग अलग संस्कृतियां मिल रही हैं, ग्रीक, लिडियन, मिस्र से लोग, बेबीलोन से, विचारों का लेन देन तो खूब होता होगा।
हाँ, जैसे मिस्र से ज्यामिति का ज्ञान आ रहा होगा, बेबीलोन से खगोल विज्ञान की बातें।
एग्जैक्टली, ये सब मिलेटिस पहुंच रहा था, और माहौल आप कह सकती हैं ऐसा बन रहा था कि पुरानी कथाओं से आगे बढ़कर दुनिया को तर्क से समझने की जो कोशिश थी उसे बढ़ावा मिल रहा था।
मतलब नई सोच के लिए जमीन तैयार थी।
हाँ, और थेल्स इसी माहौल में उभरे। अब उनके बचपन या शुरुआती जीवन के बारे में बहुत पक्की जानकारी तो नहीं है, पर ऐसा लगता है कि वो एक अच्छे संपन्न परिवार से थे।
अच्छा,
हाँ, शायद कोई व्यापारी परिवार रहा हो जिससे उन्हें घूमने फिरने, पढ़ने लिखने, ज्ञान हासिल करने का मौका मिला।
सुना है वो मिस्र और बेबीलोन भी गए थे।
हाँ, ऐसी कहानियां हैं, पक्का नहीं कह सकते पर कहा जाता है। अगर ये सच है तो सोचिए वहां के गणित और खगोल विज्ञान ने उनके दिमाग पर कितनी गहरी छाप छोड़ी होगी।
और वो सिर्फ किताबी कीड़े नहीं थे, है ना?
बिल्कुल नहीं, वो तो कई चीजों में माहिर थे, प्रकृति को समझने वाले, दार्शनिक, गणितज्ञ, खगोल शास्त्री, इंजीनियर भी, और यहाँ तक कि राजनीति में भी थोड़ी बहुत दखल रखते थे।
वाह, मल्टी टैलेंटेड।
हाँ जी, उनकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है 585 ईसा पूर्व के सूर्य ग्रहण की भविष्यवाणी।
अच्छा,
उन्होंने भविष्यवाणी की थी,
ऐसा कहा जाता है।
और कहानी ये है कि इस भविष्यवाणी ने लीडिया और मीडिया के बीच एक लड़ाई चल रही थी उसे रोक दिया।
कैसे?
दोनों पक्षों ने इसे शायद कोई दैवीय संकेत माना और लड़ाई बंद कर दी। अब ये सच है या कहानी कहना मुश्किल है, पर इस एक घटना ने उन्हें पूरे ग्रीस में मशहूर कर दिया। उन्हें ग्रीस के 7 सबसे बुद्धिमान लोगों में, 7 सेजेस में गिना जाने लगा।
लेकिन उनका शायद सबसे बड़ा योगदान वो स्कूल था जिसे उन्होंने शुरू किया।
हाँ बिल्कुल, माइलेशियन स्कूल ऑफ फिलोसफी, पश्चिमी दर्शन की शुरुआत कह सकते हैं यहीं से हुई।
माइलेटस का जन्म स्थान बना। तो अब आते हैं उनके सबसे मतलब क्रांतिकारी काम पर, वो सवाल जो उन्होंने पूछा।
हाँ, वो बुनियादी सवाल है जिसने फिलॉसफी की नींव रखी। ये सारी चीजें आखिर बनी किस चीज से हैं, मतलब व्हाट इज द बेसिक सब्सटेंस ऑफ ऑल थिंग्स,
और उनका जवाब था पानी।
हाँ, सब कुछ पानी है।
ये आज सुनने में थोड़ा मतलब अजीब सा लगता है।
पानी से आग कैसे बनेगी या पत्थर कैसे बनेगा?
हाँ हाँ, पहली नजर में ये जवाब थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन असली बात जवाब नहीं है।
तो फिर क्या है?
असली बात है सवाल पूछने का तरीका। पहली बार किसी ने दुनिया की बुनियाद समझाने के लिए किसी देवता या क्या कहते हैं जादुई शक्ति का नाम नहीं लिया।
अच्छा,
उन्होंने एक प्राकृतिक चीज पानी का नाम लिया। ये सोचना कि दुनिया को इंसानी तर्क से अपने आसपास देखकर समझा जा सकता है, यही असली क्रांति थी।
पर पानी ही क्यों चुना होगा उन्होंने, कोई अंदाजा?
अंदाजे ही हैं, शायद इसलिए कि पानी जीवन के लिए कितना जरूरी है ना, हर जगह दिखता है और रूप भी बदलता है, बर्फ, पानी, भाप, ने भी कुछ ऐसे ही अंदाजे लगाए थे।
जी, लेकिन फिर से जोर इस बात पर है कि उन्होंने प्राकृतिक व्याख्या खोजी, लॉजिकल नेचुरल एक्सप्लेनेशन, और इसी तर्क और अवलोकन को उन्होंने ज्योमेट्री में भी इस्तेमाल किया।
हाँ, कहते हैं कि मिस्र में तो ज्योमेट्री का इस्तेमाल जमीन नापने वगैरह के लिए होता था।
हाँ, प्रैक्टिकल था। थेल्स ने उसे, ऐसा माना जाता है, ग्रीस में लाकर सिद्धांतिक रूप दिया, थियोरेटिकल बनाया।
हाँ, कुछ प्रमेय थ्योरम्स उनसे जोड़े जाते हैं, जैसे वो वाला कि आधे वृत्त में बना कोण हमेशा समकोण होता है,
थेल्स थ्योरम, बिल्कुल, या ये कि वृत्त का व्यास उसे दो बराबर हिस्सों में बांटता है। ये सिर्फ नापने की बात नहीं थी, ये सिद्ध करने की बात थी, तर्क से साबित करने की,
लॉजिक से।
एग्जैक्टली, ये डिडक्टिव रीजनिंग की शुरुआत थी, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, जो गणित और विज्ञान दोनों के लिए बहुत जरूरी है।
थेल्स के विचारों में एक और चीज थी, वो हाइलोजोइज्म। वो क्या था?
हाँ, हाइलोजोइज्म, उनसे जुड़ी एक बात कही जाती है, सभी वस्तुएं देवताओं से परिपूर्ण हैं।
देवताओं से? तो क्या वो फिर से देवताओं की बात करने लगे?
शायद, सीधे तौर पर नहीं। इसकी एक व्याख्या ये है कि थेल्स मानते थे कि पदार्थ, मतलब मैटर, अपने आप में जीवित है, उसमें हरकत करने की, बदलने की शक्ति है।
अच्छा, मतलब चीजों में जान है
एक तरह से। ये चीजों में बदलाव क्यों होता है, इसे समझाने का एक तरीका था, बिना किसी बाहरी देवता का सहारा लिए। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, शायद थेल्स के लिए ये पदार्थ के अंदर की जीवंतता का सबूत था।
तो ये थोड़ा, मतलब, पुरानी सोच और नई सोच के बीच का रास्ता जैसा लगता है, पदार्थ में ही जीवन या दिव्यता देखना।
हाँ, कह सकते हैं। ये दिखाता है कि सोच का ये जो बदलाव था मीथोस से लोगोस की तरफ, वो कोई स्विच दबाने जैसा नहीं का, रातों रात नहीं हुआ। थेल्स इस बदलाव के दौर के एक बहुत अहम पड़ाव थे। उन्होंने पुरानी सोच से नाता तोड़ा, पर शायद पूरी तरह नहीं।
अगर हम उनकी तुलना होमर जैसे पुराने कवियों से करें, जिन्होंने देवताओं की कहानियों से दुनिया समझाई, तो मुख्य फर्क क्या है?
मुख्य फर्क तो वही है, लोगोस बनाम मिथोस। होमर देवताओं के किस्से सुना रहे थे, उनके काम, उनकी लड़ाइयाँ। थेल्स ने तर्क पर आधारित एक परिकल्पना, एक हाइपोथेसिस दी।
भले ही वो पानी वाली हाइपोथेसिस बाद में सही न मानी गई हो।
हाँ, पर उनका तरीका नया था। उन्होंने देखा, सोचा, तर्क दिया।
और उनके माइलेशियन स्कूल ने इसी तरीके को आगे बढ़ाया।
जी हाँ, वो वेस्टर्न फिलॉसफी का पहला स्कूल था। उसने तत्व मीमांसा, मतलब मेटाफिजिक्स, की रियलिटी की असलियत क्या है, और नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान की नींव डाली। थेल्स ने सवाल पूछा और उनके शिष्यों ने, उनके स्टूडेंट्स ने, उस सवाल के अपने अपने जवाब खोजने की कोशिश की,
और एक दूसरे के जवाबों पर बहस भी की।
बिल्कुल, जैसे उनके बाद आए एनैक्सिमेंडर। उन्होंने कहा, नहीं, मूल तत्व पानी नहीं, बल्कि कुछ असीम अनिश्चित सा है, एपेरॉन।
और फिर एनैक्सिमेनिस आए, उन्होंने कहा, हवा है।
हाँ, यही तो खूबसूरती है इस परंपरा की। एक ने विचार रखा, दूसरे ने उसकी आलोचना की, उसे परखा, अपना बेहतर विचार दिया। ये जो बहस और विचारों के विकास की परंपरा है, वो थेल्स से शुरू हुई और आज तक साइंस और फिलॉसफी में जारी है।
तो थेल्स की विरासत आज भी जिंदा है?
अरे, बहुत गहराई तक जिंदा है। अरस्तु ने उन्हें साफ तौर पर प्राकृतिक दर्शन का संस्थापक और पहला दार्शनिक कहा। ये बहुत बड़ी बात है।
और बीच के दौर में, मध्ययुग में?
हाँ, मध्ययुग में जो इस्लामी विद्वान थे, उन्होंने थेल्स और दूसरे यूनानी विचारकों के काम को सहेज कर रखा, उनका अनुवाद किया। इसी वजह से वो ज्ञान बाद में यूरोप तक दोबारा पहुंच सका।
और आज के दौर में, मॉडर्न टाइम में, उनकी क्या अहमियत है?
आज हम उन्हें मुख्य रूप से इसलिए याद करते हैं और पढ़ाते भी हैं कि वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि दुनिया की घटनाओं को समझने के लिए हमें प्रकृति में ही कारण खोजने चाहिए, आसमान में, देवताओं के बीच नहीं।
तो एक तरह से वो साइंटिफिक सोच के बीज बो रहे थे।
बिल्कुल, आधुनिक वैज्ञानिक सोच के अग्रदूत कह सकते हैं उन्हें। दुनिया भर में आप फिलॉसफी या साइंस की पढ़ाई शुरू करें तो थेल्स का जिक्र जरूर आता है।
तो उनका वो जो बुनियादी सवाल था कि ये ब्रह्मांड किससे बना है, कैसे काम करता है,
हाँ,
वो सवाल तो आज भी फिजिक्स और बाकी साइंस के केंद्र में है, भले ही जवाब कितने ही बदल गए हों।
सही बात है, मिथक से तर्क की तरफ उनका वो जो कदम था वो आज हर ज्ञान के क्षेत्र का, हर डिसिप्लिन का आधार है। हम सबूत मांगते हैं, हम तर्क करते हैं। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं थेल्स ने की।
उनसे जुड़े कुछ मशहूर कथन कोट्स भी हैं।
हाँ,
एक तो वही सब कुछ पानी है।
हाँ, ये उनका सबसे फेमस सिद्धांत है जिसे आर्की यानी मूल तत्व का सिद्धांत कहते हैं।
एक और बहुत मशहूर है, स्वयं को जानो, नो दाई सेल्फ।
हाँ, ये असल में तो डेल्फी के अपोलो मंदिर पर लिखा था, लेकिन थेल्स और दूसरे जो सेजेस थे उनसे इसे जोड़ा जाता है। ये दिखाता है कि प्राचीन यूनान में सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान को कितना महत्व देते थे। खुद को समझे बिना दुनिया को क्या समझेंगे।
और वो बात, सभी वस्तुएं देवताओं से परिपूर्ण हैं।
हाँ, जैसा हमने पहले बात की, ये शायद उनके हाइलोजोइज्म वाले विचार को दिखाता है कि पदार्थ में ही, मैटर में ही जीवन या चेतना है।
एक और है, विचार से ज्यादा सक्रिय कुछ भी नहीं है क्योंकि यह ब्रह्मांड में घूमता है।
क्या बात है, ये इंसानी दिमाग की तर्क की ताकत में उनके विश्वास को दिखाता है कि विचार कहीं भी पहुंच सकते हैं, ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने की कोशिश कर सकते हैं।
लेकिन तेल्स पर कुछ सवाल भी तो उठते हैं, आलोचनाएं भी होती हैं।
हाँ, बिल्कुल होती हैं। एक तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उनके बारे में सीधी जानकारी नहीं है, प्राइमरी सोर्स नहीं है। हम बाद के लेखकों पर निर्भर है, और हो सकता है उन्होंने थेल्स की कहानी को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया हो। क्या उन्होंने सच में ग्रहण की भविष्यवाणी की थी, क्या वो सारे ज्योमेट्री के प्रमेय उन्हीं के थे, इस पर बहस होती है।
अच्छा।
हाँ, कुछ मानते हैं कि बाद के लोगों ने पहले दार्शनिक की छवि को और महान बनाने के लिए ये बातें शायद जोड़ दी हों।
और उनके पानी वाले सिद्धांत की भी तो आलोचना हुई।
हाँ, उनके अपने शिष्य एनैक्सिमेंडर ने ही सवाल उठाया। उन्होंने कहा, भाई पानी तो ठंडा और गीला होता है, इससे सूखी और गर्म आग कैसे बन सकती है? मूल तत्व तो कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें ये सारे गुण छुपे हों, मतलब वो एपिरॉन।
लेकिन फिर भी तरीके की अहमियत तो बनी रहती है।
बिल्कुल, आलोचनाओं के बावजूद थेल्स का तरीका क्रांतिकारी था। ये भी ध्यान रखना चाहिए कि तर्क की बात करते हुए भी उनकी सोच में शायद वो पुरानी प्रकृति में जीवन देखने वाली झलक बाकी थी। जैसा हमने कहा, मिथक से पूरी तरह बाहर आना आसान नहीं था।
और उनसे जुड़े कुछ मजेदार किस्से भी हैं। एक वो कुएं में घिरने वाला बड़ा मशहूर है।
हाँ हाँ, प्लेटो ने लिखा है उसके बारे में कि एक बार थेल्स रात में आसमान में तारे देख रहे थे और देखते देखते इतने मग्न हो गए कि चलते चलते कुएं में जा गिरे। और पास में एक नौकरानी खड़ी थी, उसने मजाक उड़ाया, बोली कि आसमान की बातें तो सोचते हो पर पैरों के नीचे क्या है ये नहीं देखते। ये कहानी जैसे वो एब्सेंट माइंडेड प्रोफेसर का पहला उदाहरण बन गई।
और एक वो जैतून के प्रेस वाला किस्सा भी है।
हाँ, वो भी बड़ा दिलचस्प है। अरस्तु बताते हैं कि लोग थेल्स का मजाक उड़ाते थे कि भाई ये फिलॉसफी विलॉसफी से पेट नहीं भरता, ये बेकार की बातें हैं।
अच्छा, तो उन्होंने क्या किया?
थेल्स ने सोचा इनको सबक सिखाया जाए। उन्होंने अपने खगोल ज्ञान से, मतलब मौसम वगैरह का अंदाजा लगाकर, भविष्यवाणी की कि अगले साल जैतून की फसल जबरदस्त होगी। तो उन्होंने सर्दी में ही, जब कोई पूछ नहीं रहा था, शहर के सारे जैतून पैरने वाले जो प्रेस होते हैं वो बहुत सस्ते में किराए पर ले लिए, बुक कर लिए।
चालाकी।
हाँ, फिर जब फसल आई और प्रेस की मांग बढ़ी तो थेल्स ने मनमाने दाम पर उन्हें किराए पर दिया और खूब पैसा कमाया।
लेकिन उनका मकसद पैसा कमाना नहीं था शायद।
अरस्तु के मुताबिक तो नहीं, वो सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि देखो, दार्शनिक अगर चाहें तो पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसे से ज्यादा ज्ञान को महत्व देते हैं। ये फिलॉसफी की प्रैक्टिकल वैल्यू साबित करने का उनका तरीका था।
कमाल है। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो थेल्स वो शख्स थे जिन्होंने पश्चिमी सोच का, मतलब, नक्शा ही बदल दिया।
बिल्कुल, वो मिथक से तर्क की ओर मुड़ने वाले, कह सकते हैं पहले झंडा बरदार थे। उनका जवाब कि सब कुछ पानी है आज उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता, लेकिन उनका सवाल पूछने का तरीका और जवाब खोजने की विधि,
प्रकृति में कारण ढूंढो।
हाँ, वही उन्होंने हमें सिखाया कि दुनिया को देखा जा सकता है, समझा जा सकता है, और इसके लिए अपने तर्क का, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया जा सकता है।
तो उनका महत्व उनके जवाबों की सटीकता में उतना नहीं है जितना उनके सवालों की गहराई और उनके नजरिए में है।
एकदम सही कहा आपने। उन्होंने जो रास्ता खोला अवलोकन और तर्क से जवाब खोजने का, उसने ज्ञान की पूरी दुनिया को बदल दिया और ये हमें आज भी सोचने पर मजबूर करता है ना?
हाँ।
कि आज हम अपने आसपास की दुनिया को समझने के लिए किन तरीकों पर निर्भर हैं? क्या सिर्फ तर्क और सबूत ही काफी हैं, या ज्ञान पाने के, समझने के और भी रास्ते हो सकते हैं? इस पर सोचना काफी दिलचस्प होगा।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।